ಗೀತಾಂಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಬದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಭಕ್ತ್ಯಾವಿಹೀನ ಅಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿ ತರಂಗಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯೀಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೇ ಚರಣಂ. ಯಂ ಪ್ರಭ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರಯಾ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರ್ವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತರಿದಯಂ ಮುನಿಮಾನ್ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜಿಮಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞೇ ರಾಧೆ ತನ್ನೈ ಮಾಮ ಶರಣಂ. स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। जिन गोपियों के संग से नीच जाति कुरूप सदाचार विहीन असदाचार में लिप्त हमारे तत्व को नहीं जानने वाली पुलिंदी और आप ये सब कन्याएं भी एक दो नहीं शत सहस्त्र करोड़ों ऐसे लोग हमको प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए? कोई को तो इसी जन्म में जिस जन्म में थी और कोई कोई दूसरे जन्म में उनको पाया। ऐसी गोपियों के सत्संग की महिमा है। कहने के बाद में अब अपने से ना कह करके अब उद्धव के द्वारा इस बात को ये बतला रहे हैं। एता परम तनुभितो भोगी गोप बद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति जदभ्यो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। एता परम तनुभितो, ये उद्धव जी गोपियों के लिए बतला रहे हैं। जब कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा और उद्धव जी गए ब्रज में और गोपियों की प्रेम महिमा को उन्होंने कुछ उपलब्धि की, अनुभव की, उस समय में उद्धव जी कह रहे हैं पृथ्वी में यदि जन्म लेकर के मनुष्य जन्म लेकर के किसी का जन्म सार्थक हुआ तो गोपियों का ही जन्म एकमात्र सार्थक है। इनका यथार्थ मनुष्य देह धारण करने का फल इन्हीं को यथार्थ मिला। आंखों का फल क्या है? कृष्ण का दर्शन करना। ब्रज में जब वो एक वन से दूसरे वन में गोचारण करते हुए जा रहे हैं और करुणा भरी और प्रेम भरी नेत्रों से गोपियों की ओर में देख रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, उस समय कृष्ण का दर्शन करना ही आंखों का फल है। शरीर का फल क्या है? कृष्ण के जो परम भक्त ऐसे हैं उनको स्पर्श करना ही ये शरीर का फल है। नाक का फल क्या है? यदि राधा कृष्ण के चरणों में या उनके गले में जो पुष्प की मालाएं जिसको गोपियों ने गूथा है और कृष्ण को अर्पित किया है उस निर्माल्य का आग्रहण करने और अपने शरीर में धारण करने में ही उसका फल है। तो इस तरह से गोपियों का ही जन्म मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। पृथ्वी धन्य है जहां पर की ब्रज है, और ब्रज धन्य इसलिए है कि वहां पर गोपियां हैं, इसलिए ब्रज धन्य है। क्यों? गोविंद एवं निखिलात्मने रूढ़ भावा, गोविंद नाम इंद्र ने दिया, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इंद्रियों के अधिपति जो ऋषिकेश इत्यादि हैं उनके भी मूल ये कृष्ण हैं, इसलिए इंद्र ने उनका नाम रखा गोविंद। तो ये गोविंद के प्रति निखिल आत्मनि समस्त जीवों के आत्मा स्वरूप जो कृष्ण हैं उनके प्रति इनका रूढ़ भाव, महाभाव से भी ऊपर, महाभाव का भी घनत्व घना भाव रूढ़ भाव है, जिसको हम वांछन्ति यद् भवभियो, संसार से दुख कष्टों से भीत होने वाले, मुक्ति की कामना करने वाले, मुमुक्षु, मुमुक्षु माने क्या, मुक्ति की इच्छा करने वाले, संसार से भी, और मुनयो मुनिलो जो सब समय मनन करते हैं, और मुक्ति जिनकी हो गई है स्वरूपतः, ऐसे मुनिलो, और वयंच हम भक्त लोग भी, हम लोग भी इसकी वांछा करते हैं किंतु मिला नहीं है किसी को, किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। वह जन्म ही क्या है जिसमें अनंत की कथाओं में रस नहीं है, जिनको रति नहीं है भगवान की लीला कथाओं को श्रवण में, जिनको रुचि नहीं है, वैसे कोटि कोटि ब्रह्म जन्म लाभ करके ही क्या होगा, ब्राह्मणों का जन्म अथवा ब्रह्मा का भी जन्म लाभ करके क्या होगा। और यदि अनंत की कथाओं में रसी और रस है जिनको, उनके लिए ब्रह्म जन्म बेकार है, कोई जरूरत नहीं। अब इसका सनातन गोस्वामी जी अब अर्थ कर रहे हैं। जगत में उद्धव इत्यादि नारद स्वयं ब्रह्मा ये परम पूज्य हैं, किंतु इनके भी परम स्तुति और वंदना योग्य गोपियां हैं, इनकी परम महात्म पराकाष्ठा इनसे बढ़कर के और कोई नहीं है। उद्धव देखो तुम हमारे तंग में भृत्य सुहित सखा मंत्री, आप हमारे परम भृत्य हैं, सेवक हैं, मंत्री हैं, सुहित हैं, सुहित मैंने क्या हमारी अच्छाई चाहने वाले सुहित भी हैं, सखा हैं, मंत्री प्रवर हैं, हमारे एक तरह से सभी कुछ आप ही हैं। केवल यही नहीं, तंग तु भागवतोत्तम भागवतेषु अहम्, जैसे शंकर जी वैष्णव में कृष्ण ही कौन है, शिव है वैष्णवा नाम, और नदियों में गंगा मैं ही गंगा हूं, पर्वतों में गोवर्धन मैं हूं, जहां जहां वो अच्छी चीज जो विभूतियां हैं वो सब मैं हूं, उसी तरह से भागवतों में मैं ही तुम हूं उद्धव। अर्थात तो अपने से पृथक बतला रहे हैं, न तथा मैं प्रियतम आत्मो जो निर्शंकर, मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा जी मेरे प्रिय नहीं है, मेरे सखा हरिहर एक आत्मा भी उतने प्रिय नहीं है, न च संकर्षण, संकर्षण हमारे भैया हैं किंतु वो भी हमारे उतने प्रिय नहीं है, और की तो बात क्या, लक्ष्मी हमारे अंक में शाइन करने वाली लक्ष्मी जो है वो भी हमारी उतनी प्रिय नहीं, मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने तुम हमारे प्रिय हो। उद्धव को भगवान ने इस प्रकार से कहा, किंतु उस उद्धव के जो परम आराध्य हैं, जिनके चरणों की धूलि वो स्पर्श करना चाहते हैं, वो कैसी होंगी? जिसके उद्धव इतने प्रिय, तो गोपियां कितनी ऊपर होंगी। इस तरह से ये बात है, ये उद्धव गोपियों की चरण धूलि बनने के लिए वृंदावन में गुल्म लता होना चाहते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, तो गोपियों की महिमा कैसी होगी। इदानीम अच्छा, इन सब प्रमाणों के द्वारा ये मालूम होता है कि कृष्ण के बड़े प्यारे उद्धव जी हैं, किंतु जब गोपियों की महिमा उन्होंने देखी, जे कृष्ण के प्रति इतना उनका रूढ़ भाव, मथुरा में रहते हुए इसकी अनुभूति नहीं की, और तब उन्होंने देखा जे कृष्ण संपूर्ण रूप से ब्रज में हैं, मथुरा में एक सामान्य अंश से हैं, और ये शायद गोपियों का जगत में प्रेम विख्यात करने के लिए ही यहां पर हैं, और कोई कारण नहीं, नहीं तो मथुरा नहीं आते, इसलिए यहां पर ब्रह्मा इत्यादि भक्त हैं, परमेष्टि हैं, और उनके आधिकारिक सेवक दास भी हैं, किंतु थोड़ा सा संबंध है उनके नाभि कमल से, उनके अंश के नाभि कमल से निकले हैं। इसमें यह दिखला रहे हैं कि ब्रह्मा जी भक्त हैं, किंतु उसमें पुत्र का भी अंश कुछ है, तो ये दिखला रहे हैं इसी श्लोक में। इसमें आत्मजोनी, आत्म जो मैं ही जिनकी जोनी हूं, हमसे निकले हैं, तो यहां पर ये दिखला रहे, ये संबंध जो है पुत्र का, ये भाव अधिक है भक्ति का। भक्ति माने क्या? भज धातु सेवायाम, सेवा की दृष्टि से वो सेवा का जो प्रेम का संबंध है वो जरा कम है, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर में तरह तरह के दायित्व हैं, इतना उनका वैभव है, अब सारे ब्रह्मांड को चलाना पड़ता है, और उस चलाने के लिए कभी कभी हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को भी बर देना पड़ता है, और इसलिए भगवान को इस सेवा में बाधा होती है, कभी कभी रावण कुंभकर्ण को भी बर देने में ये सहायक होते हैं, और ये लोग भगवान का विरोध करते हैं, उस समय में भगवान को मैं अपना मुख नहीं दिखा पाता, इसलिए हमसे अधिक श्रेष्ठ शंकर जी हैं। कभी कभी मैं खुद जाकर के कृष्ण की लीला में मैं बाधा देता हूं, गोपों को और सखाओं को और बछड़ों को चोरी करके ले गए, इसका अतिरिक्त और लीलाओं में भी ब्रह्मा जी ऐसा करते हैं, और 24 घंटा संसार के कामों में लगने से वो भूल भी जाते हैं, वो बैठ करके गोपी भाव से भगवान की चिंता करेंगे, ये सब चित्त। यदि समुद्र में से फेन निकला, और फेन से निकला कौन? दैत्य, बस ब्रह्मा जी भागते भागते प्राणांत हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि हमको ये सुजोग नहीं मिला जब ऐसे में भजन कर सकूं, इसलिए ब्रह्मा जन्म में भी जहां अधिक वैभव होगा भगवान का भजन निश्चित रूप से नहीं होगा, रुपए पैसे अधिक हो गए, प्रतिष्ठा अधिक हो गई, तो चारों तरफ से भगवान का भजन बंद हो जाएगा, उसी में हम लोग लग जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्मा का जन्म उतना श्रेष्ठ नहीं है। शंकर का भी ऐसे ही समझो, प्रहलाद महाराज की वो प्रधानता दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वे कौन, सहस्रार्जुन इत्यादि को, बाणासुर को उन्होंने सहायता की, उनका वो शिष्य है, और उसके लिए कृष्ण से युद्ध करना पड़ा, और भी कितने हैं सब, उनको मायावाद का प्रचार करना पड़ा। इस तरह से शंकर जी अपने को कोसते हैं कि मैं कृष्ण का प्यारा नहीं, इसलिए यहां पर आप बतला रहे हैं ये ब्रह्मा जी विख्यात बृहस्पति के शिष्य हैं, मंत्र शिरोमणि हैं और चतुरता के साथ में कृष्ण के दिए हुए संदेशों को लेकर के ब्रज में गए। इनको ऐसा भी मान था कि मैं गोपियों को सांत्वना दे करके ठीक ज्ञान दे दूंगा और वो समझ जाएंगी जे कृष्ण हमारे साथ ही सब समय है। किंतु जितना ही संदेश दिया उनका विरह तनिक भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता चला गया, समर्थ नहीं हुए। बल्कि उन्होंने गोपियों के वर्धमान माने क्रमशः नित्य निरंतर बढ़ते हुए अश्रुत जिसको आज तक कभी नहीं सुना गया भागवत के पहले, और अदृष्ट पूर्व ऐसा किसी ने कभी देखा नहीं गोपियों जैसा प्रेम। उनका प्रेम गंभीर्य, कैसा प्रेम गंभीर्य, जिसके प्रति इतना उनका प्रेम है और उसको वो चोर लंपट धूर्त चोट्टा सब कुछ कह रही हैं। कहते उनसे हमारा कोई संबंध हम नहीं रखना चाहती हैं, उनको भूल जाना चाहती हैं, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, इसलिए उनके प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। इतना भाव उनका गंभीर है, इतना भाव गंभीर है कि कृष्ण को स्वयं उनके चरणों में गिरना पड़ता है। कभी कभी कृष्ण भी उनके गंभीर प्रेम के आशय को नहीं समझ सकते, इसलिए महाप्रभु के रूप में आए राधा जी का भाव लेकर के उनको समझने के लिए। राधाया प्रणय महिमा कैसे, उद्धव जी मन ही मन में बड़े विस्मित हुए और उन्होंने सिद्धांत किया, ओ इस पृथ्वी में यदि किसी का जीवन सार्थक है, मनुष्य धारण करना सार्थक है, तो किसका केवल गोपी, जो ऐसा गंभीर प्रेम उन्होंने पाया है। अतः पर उनको धीरे धीरे भक्ति से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करते करते हुए स्तुति करते हुए 6 श्लोक में उनकी महिमा गान किया, उसमें से ये पहला है। गान करते हुए क्या कह रहे हैं, गोपियों की जो ऐसे सुंदर गंभीर भाव हैं, प्रेम है, जिसको मुमुक्षु संसार में कष्ट भोगने वाले जीव जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, विवाह शादी करते हैं, घर बनाते हैं, बिजनेस वाणिज्य व्यवसाय करके मकड़े के जाल में फंस कर अंत में प्राणों को छोड़ देते हैं। सुख किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं, यदि सुखी मिलता तो इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हो गए, ये संसार को क्यों छोड़ करके चले जाते। यदि कहो जनक की भांति रहते, जनक भी तो छोड़ दिए, व्यक्त क्यों हो गए। इसलिए संसार सुखमय नहीं है, इसे लोग मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति मुमुक्षु और मुक्त जो हैं और भक्त लोग, इन सब लोगों ने गोपियों की महिमा का गान किया है। इसी को एता परम तनुभूतो भो गोपो, इसे श्लोक में बतला रहे हैं। नंद ब्रज में स्थित महालक्ष्मी स्वरूपा ये गोपियां हैं। ये कोटि कोटि गोपियां कैसी हैं, ओ ब्रह्म संहिता में बतलाए 17 ब्रह्म शब्दमान और भी प्रतिभाविता भी ताभी अव निज रूप तया कला भी, वो और भी उन्नत। ऐसे ये महालक्ष्मी स्वरूपा गोपियां ही पृथ्वी में सबसे सफल जन्मा है। असल में ये इनका तो जन्म नहीं इस जगत में, ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति और उसके कायव्यूह या प्रकाश है, किंतु मनुष्य लीला के रूप में इसका वर्णन किया जा रहा है। ऐसा गोपियां गोपियां ही हैं, जो कृष्ण को भी गोपी गुप्त रखती हैं, कृष्ण का भी प्रेम का संवर्धन करती हैं, उनका रक्षा करने वाली होती हैं, इसलिए उनका नाम गोपी है। सर्व अंतर्जामी क्या है, आत्मा निखिल आत्मनि निखिल प्राणियों के, निखिल जीवों के आत्मा स्वरूप जो हैं, सर्वांतर्यामी गोविंद, इनके प्रति रूढ़ भाव। रूढ़ भाव माने क्या है? जहां हम लोग श्रद्धा के लिए ही, परमार्थिक श्रद्धा के लिए लालायित हैं, नहीं हो पाती है, और कहां ये ऐसी श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तब ये रूढ़। ऐसा गोपियों का इन कृष्ण के प्रति रूढ़। यशोदा मैया का है कहां तक? अनुराग। कभी कभी सुबल आदि शाखाओं का अनुराग के बाद भी महाभाव को स्पर्श करता है। रुक्मिणी इत्यादि का कभी कभी भाव महाभाव को थोड़ा सा स्पर्श करता है, इसे आगे नहीं। इन गोपियों का ही भाव रूढ़ है। भूवि शब्द के द्वारा पृथ्वी और पृथ्वी से लेकर के भोग ऐश्वर्य पर ये स्वर्ग भी, वैकुंठ को भी ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं। कहीं भी कृष्ण विषय विषयक प्रेम जो है ये नहीं हो सकता, वैकुंठ जगत में भी ये संभव पर नहीं है, असंभव है। यदि कहो जे कृष्ण गोपियों को बुला लेते द्वारका में और वहीं राश करते, गोपियों के साथ में रहते, तो क्यों नहीं बुला लेते? नहीं संभव है। कृष्ण वहां पर बंसी नहीं धारण कर सकते, मोर का मुकुट नहीं कर सकते, वहां के लोग, वहां के जादव लड़के हंसेंगे और बंसी निकाल करके छीन करके फेंक देंगे और सोने का हार और ये सब पहना देंगे, गैया को चराने देंगे। महाधराज धीराज कृष्ण वहां द्वारकाधीश, गैया को लेकर के वहां पर चराने जाएंगे, लठिया लेकर के, कमली, काली कमली लेकर के, खाली पैर, खाली जूता, जूता भी नहीं, कृष्ण के लिए संभव होगा? अरे एक बार दुर्वासा ने उनको रथ में जोत दिया और हांकने लगे, और उस समय रुक्मिणी इत्यादि रानियां सब देखती रह गई, भय के मारे भयभीत हो गई, उसमें न जाने क्या हो गया। और ऐसे यदि होता है यशोदा मैया कान मलती हैं, वहां पर कोई मल दे, ये सब वहां के लिए संभव पर नहीं है। ऐश्वर्यमयी भूमि में ये सब संभव पर नहीं है। इसलिए गोपियां भी कहते हमें ले जाकर के वहां क्या करोगे, वहां पर तो तुम्हारी पाटरानियां सब समय तुम्हारे पास में रहेंगी, ये संभव पर नहीं है। सुतरां ये वैकुंठ इत्यादि के में भी इसका अभाव समझना चाहिए। यहां तक कि द्वारकापुरी तक ये भूमि का तात्पर्य, वहां तक द्वारका भूमि भी तनुभृतो, जो शरीर को धारण किए हुए तीन गुल्म लता इत्यादि सब कुछ देहधारी, नीच योनि से लेकर के जितने भी जीव हैं, इनको भी ये गोपियां अपने संस्पर्श से क्या कर दिया, जो जिसको जिसको जिसमें इनके चरणों की धूली लगी हुई, जिसको उद्धव चाहते हैं, और उनको शायद मिले न मिले किंतु वृंदावन के सेवा कुंज है और सब जगह है, यहां पर घासें हैं, लताएं हैं, जिस पर कि गोपियां चल रही होंगी भाव में विभोर होकर के, उनका स्पर्श हो जाने से वो निष्फल जाएगा। साधारण एक नारद जी जैसे भक्त हैं, वो भी प्रेमी हैं, और जिनके दर्शन मात्र से ही नलकुबर जैसे निम्न ज्योनि को कहियो और दुराचार में ग्रस्त, वो भी भगवान का प्रिय बन गया। जिसको जिसको नारद छू देते हैं उसको वो ऐसा सिद्ध बना देते हैं। तो ये गोपियों का चरण की धूली जहां जिनको स्पर्श मिल गया होगा वृंदावन में, उस समय में तीर्ण गुल्म लता सांप बिच्छू सब जो कुछ भी गो के स्पर्श से सब सच्चिदानंदमय तनु होकर के कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। इसलिए ये गोपियों का जन्म ही सार्थक है। दूसरों को अपना तो सार्थक है, दूसरों का जीवन भी सार्थक बना देती है। अथवा स्वभावतः अपने करुणा के प्रभाव से पृथ्वी के दुर्गत जनों के परम हितकारी ये गोपियां हैं। कैसे? वंदे नंद ब्रजई स्त्रीनां पादरेणु अभिक्ष्णश जासं हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्वयम्। उनके मुखों से जो हरि कथा निकली है वो कथाएं विरह में और संयोग में निकली हैं, रूढ़ रूप में निकली हैं। वो कथाएं विश्व के समस्त लोगों को यदि स्पर्श कोई भी कर दे या स्पर्श करा दे तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। पुनाति, पुनाति माने क्या? पवित्र माने ये मत समझो जो नेगेटिव रूप में उनके दुखों को दूर करती कर करके और जो अपवित्र थी पवित्र कर, नहीं, कृष्ण प्रेमा भक्ति दे करके उनका जीवन सार्थक कर दिया, ये पवित्र, साधारण पवित्र नहीं। गंगा जल में हम पवित्र होते हैं, पाप दूर हो जाते हैं, ये नहीं, केवल पॉजिटिव रूप में उनमें ये ब्रज की भक्ति को वो दे देती है। यदि वे स्वरूप सिद्ध जो हो गई और स्वरूप सिद्ध के बाद में गोपी के घर में जन्म लिया, उनको संग देकर के ये क्या करती हैं? उनको नित्य सिद्ध बना करके कृष्ण के रास आदि लीलाओं में प्रवेश करा देती हैं ये गोपियां, उनके बिना ये नहीं हो सकता। उनको भी अपेक्षा रहती गोपियों की कृपा की तो और लोगों की तो बात क्या, उसका कारण क्या है? कारण है अखिलात्मा परमेश्वर श्री गोविंद के अत्यंत प्रियवती हैं, उनको अपने हृदय में धारण करती हैं। साधु संत लोग जगत को पवित्र किस लिए करते हैं? क्योंकि अपने हृदय में भगवान को रखते हैं, कृष्ण वहीं पर विश्राम करते हैं। जिनके हृदय में भगवान रहेंगे और उसकी अनुभूति उनकी हो और वो सेवा करते हैं तो उनके प्रभाव से अपने आप जगत का कल्याण हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उनको अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नारद जी को जो कोई देख लिया, जैसे देख लिया उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा अवश्य ही। यदि यहाँ एक क्रियाशन का मिट्टी के टीन टीन रख दिया जाए तो उसका गंध जरूर चारों तरफ में आएगा। जहां पर साधु रहेंगे उनका गंध नहीं आएगा, उनके अंदर से चिन्ह में जो चिनगारियां निकलती हैं वो जगत को पवित्र कर देती हैं। उनसे कोई प्रश्न करो ना करो, हम उनके सामने बैठ जाओ तभी वो क्रिया करती हैं। और यदि कृपा करके कुछ हरि कथा कहते हैं तब तो कोई बात ही क्या है, जरूर उसका प्रभाव, ऐसा साधु संघ का महात्म है। तथापि एव है गोविंद एव अखिलात्मनिरूढ़ भावा, इसका अर्थ ये क्या है? उनका रूढ़ भाव इतना अधिक गंभीर है, सर्वनिरपेक्ष। सर्वनिरपेक्ष माने क्या? ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि के द्वारा वो नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति के द्वारा, भक्ति संजात होती है। विशेष करके भगवान की कृपा से या महाभागवतों की कृपा से ये भक्ति होती है, इसलिए सर्व निरपेक्ष है। ज्ञान के द्वारा नहीं होगा, कर्म के द्वारा, अच्छे अच्छे सदाचार कर्मों को करेंगे नहीं होगा, दान पुण्य करेंगे वो भी नहीं होगा, वैदि भक्ति द्वारा भी नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा ये चांस है कि उसमें वैदि भक्ति करते समय किसी महापुरुषों का संग हो जाए और उनके संग के प्रभाव से उसका बदल हो जाए, तभी एक हो सकता है, अन्यथा नहीं। था अपूर्व परम विचित्र रास क्रीड़ा अधुना अमात धैर्योपहारी परम मनोहर जगत रोदक और वैष्णव गणेर अंत दशा संपादक चीर विरह द्वारा अंत संवर्धित भावावेग। मैं एक एक पर विशेषण एक एक देख करके चले जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी कैसा वो रूढ़ भाव उनका कैसा है उसी के लिए बता। राष्ट्रीड़ा ये गोपियों ने कृष्ण के लिए बुलाया, रास के लिए न कृष्ण ने अधैर्य होकर के बुलाया, इसलिए बुलाया, उनके बिना इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी इसलिए गोपियों को बुलाया। गोपियां सचमुच में जा ही रही थी किंतु छल बल कल से कृष्ण ने जाने नहीं दिया। राष्ट्रीय इत्यादि के द्वारा हमारे धैर्य को भी हरण करने वाली, कृष्ण के भी धैर्य को हरण करने वाली परम मनोहर जगत रोधक, जगत को भी रुला देने वाली अपनी विरह व्यथा से, भाव का जो आवेग है, प्रेम वैचित्र चित्र जल्प इत्यादि जो भाव है, अशक्य सुदुष जिसको साधारण आदमी नहीं सह सकता, उद्धव तो एकदम नहीं सह सकते, वो थोड़ा सा गोपियों का दुख देख करके ही विचलित होकर के मथुरा भाग गए, नारद इत्यादि इसीलिए नहीं जाते, उनके विरह दशा को नहीं संभाल पाते। प्रेम भरे विकार के तरंग मालाएं, माने अष्टसात्विक भावों की जो तरंग मालाएं हैं उस पर डूब उतरा रही हैं, खेल रही हैं, अखिल ब्रह्मांड को प्लावित कर रही हैं। ये महाभाव का एक लक्षण है, अपने दुखों से संक्रमित कर देती हैं सारे वहां पर जड़ को या चेतन को। अखिल आत्मा का कहने का यह भी तात्पर्य है, कोई समझे ना समझे, समस्त जीवों के कृष्ण आत्मा स्वरूप है, हम उसको समझ नहीं पाते। अभी कोई प्रश्न किया, यदि स्वरूपता जीवों में कृष्ण प्रेम है और कृष्ण ही सबकी आत्मा है तो उनको साइज मुक्ति कैसे होती है, जीवों को कैसे हो गई यदि उनका जब जीव का स्वरूप था, ये कैसे बदल जाता है, वो साइज मुक्ति लाभ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ होता तो है, तो वो बीच में क्यों अटक जाते हैं। जैसे आम का एक छोटा सा पौधा है, आम का छोटा सा पौधा है, उस गुठली में ही आम के रस की उसमें पोटेंसी है, किंतु गुठली को चूसने से उसमें आम का रस नहीं आएगा, ने? है उसमें आम के पेड़ में पेड़ है, उसको चूसेंगे आम का सुंदर अमृत जैसा रसास्वादन नहीं होगा, उसकी पत्तियों को चबाओगे तो कसैला लगेगा, उसमें फल आएगा, पकेगा, फिर पक करके तब फिर उसमें स्वादिष्ट रस आएगा। किंतु अब वो गुठली से थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें पत्ते भी आ गए, इतना बड़ा हो गया, और उसी समय में उसमें कुछ कीड़े दीमक लग गया है, तो क्या होगा, वो आम का पेड़ उसमें आएगा रस, आम पकेगा, उसमें दीमक लगने से क्या होगा, अरे उसका स्वरूप तो है वही रस, किंतु रस नहीं आया, क्या हुआ, खत्म हो गया। उसी तरह से अथवा किसी एक हाथी ने या किसी जानवर ने उसको पूरा उखाड़ करके खा गया, चिबा लिया, क्या हुआ, अब वो स्वरूप कहां गया। उसी तरह से जीव का स्वरूप कृष्णमय होने पर भी, कृष्ण का सेवक होने पर भी, कीड़े मकोड़े लग गए, माने मायावाद का कीड़ा मकोड़ा लग गया, बस वो साइज्य में जाकर के खत्म हो गया, साइज्य माने क्या, मर गया, उसकी आत्मा में जो कृष्ण स्वरूप का जो कृष्ण प्रेम था दासत्व, कहे वो तो इटर्नल है, तो वो आच्छादित ऐसे हो गया जो फिर उसमें से प्रेम नहीं होगा, इसलिए जीवों के लिए वो मरने से भी अधिक है, विष से भी अधिक है, हाँ? तो और क्या करेगा, यदि वहां वहां जाएगी तो उनको धीरे धीरे उद्धार कर सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, तुम दया से ब्रह्मशाही धाम में जाकर के उनको ले, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये कीड़े मकोड़े खा गए और वो पत्ता पीला पड़ गया, फिर थोड़े दिन के बाद में सूख गया, फिर क्या होगा, आम आएगा, वो बढ़ेगा, वही पर स्तब्ध होकर के खत्म हो गया। इसलिए स्तब्ध हैया बाड़ी तेना जुआ, बाड़ी तेना पाए, वो बांटती नहीं है,
बस उसी जगह स्थगित हो गई। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए गोपियों का जो प्रेम है भाई सामान्य नहीं है। जद भाव भी हो, जो संसार के भय से अत्यंत भीत है और मुमुक्षा जिनको है, मुमुक्षु इसे छुटकारा पाने चाहते हैं और संसार विरक्त जो मुमुक्षु मुनिगण और आत्माराम मुक्त भी जो हैं, कैसे आत्माराम, आत्माराम अपि मुनयो निर्गंथा उपरुक्रमे कुर्वन्त है तो किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। और यदि कृष्ण में जिनकी रुचि नहीं है और मुक्ति के अंतिम सोपान में पहुंच गए हैं और मुक्त होने वाले हैं या अपने को मुक्त समझ रहे हैं, वो भगवान का निरादर कर, भगवान के नाम रूप गुण लीला का भक्ति का निरादर करके पतंति अधः अनादृत जुष्मादांग्रया वहां से गिर जाते हैं। हम साधन कर रहे हैं, साधन करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति का साधन कर से चित्त उल्लसित होगा। यदि स्वभाव हमारा कैसा बन गया है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा मैंने समझते हैं, चिड़चिड़ा क्यों होता है, उस वस्तु में हमें रस नहीं आ रहा, उसमें रुचि नहीं हो रही है, स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। यदि ऐसा हो रहा है और भक्ति के साधन में हमारी रुचि नहीं हो रही है तो इसका मतलब भक्ति में आस्था नहीं है, तुम्हारे भक्ति में कोई कीड़ा लग गया, दीमक लग गया है, जरूर कुछ दीमक है। इसीलिए कहते हैं कोटि जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, ये समझो जैसे कुछ हमारे अंदर में गड़बड़ी है, जो हमारे आंसू नहीं निकले, चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, कुछ है हमारा, इसलिए अपने को देश दे करके अपने को सुधार करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि भक्ति का हम साधन कर रहे हैं, साथ साथ में उसमें तृप्ति आएगी और संसार से विरक्ति भी आएगी और भगवान की परेशान अनुभव ये जरूर सब होगा, खाएंगे और पेट नहीं भरेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, और यदि खा रहे हैं पेट नहीं भर रहा है तो भूत लग गया। इसलिए यहां पर कह रहे हैं ये हम लोग इस भाव को चाहते हैं किंतु प्राप्त नहीं होते। यहां वयम शब्द का तात्पर्य क्यों क्या है, उद्धव जी खुद कह रहे हैं वयम हम लोग, या हम लोगों से तात्पर्य उनके बाल्य बंधु, माने उनके बंधु कौन है, नारद प्रभृति जितने भी और भी भक्त हैं, ये उद्धव के बड़े प्यारे हैं, इसलिए वयम भक्तों के लिए कह रहे हैं। हम भगवान की सेवा करने वाले नित्य उनके जो परिकर हैं, हम परिकर होने पर भी वंशा करते हैं, ये उद्धव जी कृष्ण के द्वारका के नित्य परिकर हैं, अर्जुन उनके नित्य परिकर हैं द्वारका के, भीम द्रौपदी सब उनके नित्य परिकर हैं, और तो क्या रुक्मिणी प्रभृति स्त्रियां भी उस प्रेम के लिए वंशा करती हैं। किस प्रेम के लिए, गोपी प्रेम के लिए, श्लोक है ना गोपियों के कुछ कम कम से स्पर्श करने के लिए या क्या ऐसा एक है कोई श्लोक, वो भी हम भी वांछा करती हैं, काम या लाभ नहीं कर पाते हैं, ऐसा ये गोपी प्रेम है। यदि कहो ब्रह्मा जी मुमुक्षुगण मुक्त से भी आरंभ करके भक्ति मार्ग के आदि प्रवर्तक आदि गुरु भक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा परमेष्टि इत्यादि को लाभ करने वाले पद को कहते हैं कि उनके लिए भी उनसे भी गोपियां कैसे सब जगत पूज्य सफल जन्म हैलन, ब्रह्मा का ही जन्म सफल है यदि कोई ऐसा कहे तो उसको भक्ति का ज्ञान नहीं है समझो। ब्रह्मा जी कहते हैं तदभूरि भाग्यमिह जन्म किम पटव्यम जज गोकुलेपी, खुद ही गोपियों की नहीं, वो तो किसी भी ब्रजवासियों में से किसी एक की कह रहे हैं, बल्कि उद्धव जी तो उसे और आगे गोपियों के ही चरण धूलि चार, और ये कोई भी भवे अन्नत्र अत्र वा अनत्र तिरस्य, कोई भी हो, भक्तों का संग वो चाहते हैं, उनकी चरण धूलि चाहते हैं ब्रजवासियों का भाव पाने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी भी ऐसे भावों को चाहते हैं, परंतु ब्रह्म जन्म ही प्रार्थना बोलिए। इसलिए गोपियों का हम नहीं चाह करके ब्रह्मा जी का ही जैसा प्रेम चाहें, ओ उनका जन्म सफल नहीं, ब्रह्मा का ही जन्म अभी सफल नहीं है। इसके लिए कह रहे हैं अनंत स्वरूपे लीला कथा अनंत रसस्य, कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। साधारण रूप में ये अनंत की कथाओं में जिसको रस नहीं है, अनंत के नाम में, अनंत माने यहां पर कृष्ण सोचो, अनंत माने बलदेव भी हो सकते हैं, अनंत माने शेष भी हो सकते हैं, अनंत माने कर्णाधिशायी विष्णु भी हो सकते हैं, ये सभी अनंत हो सकते हैं, राम भी अनंत हो सकते हैं, किंतु अनंत में से भी सबसे अनंतता की चरम सीमा ये कृष्ण है। उनकी कृष्ण की लीला कथाओं के श्रवण में जिनको रुचि नहीं है, पढ़ने में जिनको रुचि नहीं है, पढ़ने के लिए कहीं नहीं कहा गया, वो तो पीछे से श्रवण के लिए ही महिमा है। क्यों? अपने से पढ़ोगे उसमें तुम्हारे भावों का दूषित अंश मिल करके वो समझने में गड़बड़ा जाएगा, नहीं समझ सको। इसलिए अपने से श्रेष्ठ, और यदि वो निवृत्त तरसई उपगीय माना हो तो फिर बात ही क्या, संसार के समस्त विषयों से निवृत्त हो और कृष्ण में अत्यंत रसस्त हो, ऐसे रसिक भाव भक्तियों के मुख से हो तो बात ही क्या। तो इसलिए अनंत की कथाओं में जिनको रस नहीं है, आनंद नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो उनका ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना या ब्रह्म जन्म भी, परमेश्वरी का पद भी किस लिए बेकार का है, बेकार एकदम। यदि किसी को भगवान अनंत अर्थात कृष्ण की लीला कथाओं के क्षण में आनंद लगता है, सुख की अनुभूति होती है, रुचि है, समझो जैसे उसका सब कुछ जीवन सफल हो गया। और कथाओं में रुचि नहीं, हरी कथा है रुचि नहीं ले पंड से ही सम, हरिनाम लेना भी पंड ही उसका हो जाएगा, हरिनाम भी रक्षा नहीं कर सकेगा। जो मठ से जाना चाहते, किसी कारण से मठ से मन खराब हो गया या साधु संग में मन खराब हो गया, तो माला लेकर के रात भर इधर से इधर चहल कदमी करेगा, सिर ऐसा नहीं किया हरे कृष्ण कर रहा है, और सोचेगा अब ये समझो कि आदमी रहेगा नहीं, अब ये दो तीन एक दिन में ही अब ये जाने वाला है, दिए कि वो क्या हो रहा है ना, दिया फप फप करते हुए अब निभने वाला है, ऐसा समझ चित बेचैन हो गया, अब सामंजस्य नहीं कर पा रहा। यदि ऐसी स्थिति होने को आए तो बस प्रश्नों का चरण पकड़ करके, गुरु जी के चरण पकड़ कर रो खूब, बस यही एकमात्र उपादान है। यहां पर अनंत माने बलदेव जी को भुला रहे हैं, कृष्ण वह बलदेव जी की भी कथाओं में रस नहीं है, या कृष्ण माने कृष्ण के साथ में ब्रजवासी गोप गोपी सबको ले लो जिनमें अनुराग नहीं, अनुराग की बात छोड़ दो, रुचि भी नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार से असंख्य ब्रह्म जन्म का क्या जरूरत है, ब्रह्मा के जन्म का, यदि वहां अनंत की कथाओं में रुचि, और यदि अनंत की कथाओं में यदि किसी को रुचि हो गई तो ये सब बेकार है, बेकार है। यदि किसी को ऐसे ही घर बैठे एक चिंतामणि मिल गई, जो कुछ चिंता करोगे वही हो जाएगा, तो लोहे की दुकान करने की जरूरत है, या किसी साग की सब्जी की दुकान करने की कोई जरूरत है, किसी स्वर्णकार की चिंतामणियों की दुकान करने की जरूरत है, जो चाहेगा उसी से हो जाएगा, वो बेकार का है। उसी तरह से यदि ये अनंत की कथाओं में रस आ गया, रुचि आ गई उसको सुनने के लिए, अब ये 6 बजे यहाँ हरी कथा होती है, अब घर में किसी तरह से मन नहीं लग रहा, छटपट छटपट मन कर रहा, आकर के बैठे कैसे सुने, आगे जाने तो सुलभ आगे बैठ जाएंगे, इसलिए हमको आगे जा करके बैठना है, तो कहते हैं कि और ब्रह्म जन्म की, ब्राह्मण जन्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? विविध महा अभिमान आदि द्वारा भगवत कथा रसे प्रतिकूल। कहते कि ब्रह्मा जी का जन्म जो है वहां इतना ऐश्वर्य है, इतनी विभूतियां हैं कि भगवत कथाओं के श्रवण में फिर रुचि नहीं होती। ठहर जाओ कितना बज गया। अतएव श्री गोविंद पदारविंद मकरंद लंपट गणे पक्षे ब्रह्म जन्म तादृश भाव उपयोगी है। जो लोग श्री गोविंद पदारविंद मकरंद लंपट ऐसे जो भक्त हैं, उनको ब्रह्म जन्म बेकार, चुटकी बजा एकदम बेकार होगा। इसलिए क्यों, ये सब भावों के, गोपियों के भावों का या ब्रज के भावों के ये विपरीत हैं, प्रतिजोगी हैं, नष्ट कर देंगे। यदि ब्रज ऐसा है, बतलाए ना, जो ब्रज में रहने का अवान्तर फल क्या हुआ, ये मुक्ति फुक्ति अलग, क्या कहां उनको भक्ति हो गई, प्रेमा भक्ति हो गई। यदि हम रह रहे हैं, घबराओ मत, समय के अनुसार में पौधे में फल फूल लगते हैं। अभी लगाया और साथ ही साथ में फल फूल नहीं होंगे, इसलिए अभी घबराओ मत, होगा। अरे जब पौधा हुआ है आम का, तो एक दिन डालियां आएंगी, उसमें फिर फल लगेंगे। एक दिन फल लग गया तो वो बड़ा होकर के पकेगा भी, पकेगा तो फिर क्या होगा, उसमें रस सुहादुर रस मिलेगा ही। इसलिए घबराओ मत, साधन भजन में पूर्ण रूप से लगो, पर तुम्हारी वंछा सिद्ध हो, वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावन। कौन है